लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन धर्म शिक्षा माला में पूर्व के ज्ञानियों पर चिंतन करते हुए आशा में विश्वास और प्रेम के तीर्थ यात्री होने का संदेश दिया। संत पापा अपने स्वास्थ्य में गिरावट के कारण रोम के जेमेल्ली अस्पताल में दाखिल हैं। अपनी बीमारी के कारण विगत सप्ताह के कुछ कार्यक्रम और आने वाले दिनों के भी उनके कुछ कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। इस क्रम में संत पापा फ्रांसिस का बुधवारीय आम दर्शन समारोह भी स्थगित रहा। यद्यपि संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला के संदेश को प्रकाशित किया गया। संत पापा फ्रांसिस ने यीशु हमारी आशा अपने बुधवारीय धर्म शिक्षा माला के संदेश में लिखा कि यीशु के बाल्यावस्था का दृश्य, जिसकी चर्चा हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में पाते हैं, ज्ञानियों की भेंट है। एक तारे के उदित होने से आकर्षित, जो हमारे लिए बहुत सारे संस्कृतियों में किसी अद्वितीय व्यक्ति के जन्म की ओर इंगित कराता है। कुछ ज्ञानी व्यक्ति पूर्व की ओर से निकल पड़ते हैं। उन्हें यह निश्चितता नहीं होती है कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं। वे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनका संहिता से कोई संबंध नहीं होता है। हमने अपने विगत धर्म शिक्षा माला में चरवाहों के बारे में जिक्र किया था, जो यहूदी समाज में हाशिए में रहने वाले थे, क्योंकि उन्हें अशुद्ध समझा जाता था। आज हम एक दूसरे दल पर देशों को देखते हैं, जो बिना देर ईश्वर के पुत्र की आराधना करने को निकल पड़ते हैं, जो इतिहास में पूरी तरह से एक नए राजकीय अंदाज में प्रवेश करते हैं। सुसमाचार हमें इस भांति स्पष्ट रूप में बतलाता है कि गरीब और परदेशी अपने में सबसे पहले हैं, जो ईश्वर के बेटे दुनिया के मुक्तिदाता से भेंट करने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा में आगे लिखा कि ज्ञानियों को हम नूह के तीन पुत्रों द्वारा उत्पन्न प्रमुख जातियों, प्राचीन काल में ज्ञात तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा मानव जीवन की तीन अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करते पाते हैं। किसी भी संभावित व्याख्या से परे वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने में यूं ही नहीं रहते, बल्कि धर्म ग्रंथ के इतिहास में बड़े बुलावे की तरह आगे बढ़ने यात्रा पर निकलते हुए अपने को दिए गए निमंत्रण का अनुभव करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं से परे देखने जाते हैं, जो आसमान की चीजों को देखना जानते हैं। आकाश में उदित हुए तारे को देखते हुए वे यूदा की भूमि यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात राजा हेरोद से होती है। अपने भोलेपन और विश्वास में यहूदियों के नवजात राजा के बारे में जानकारी हासिल करने की चाह हेरोद की चतुराई को द्विधा में डाल देती है, जो अपने सिंहासन खोने के डर से घबरा जाता और शास्त्रियों से जांच पड़ताल करते हुए तुरंत खोजबीन करने लगता है और उन्हें उसका सही रूप में पता लगाने का आदेश देता है। इस प्रकार हम सांसारिक शासक की शक्ति में उसकी सारी कमजोरियों को देखते हैं। शास्त्रों के विशेषज्ञ जानते हैं और राजा को उस स्थान के बारे में बतलाते हैं जहां नबी मीका की भविष्यवाणी के अनुसार इसराइल के लोगों का नेता और चरवाहा पैदा होगा। यह छोटा बेतलहम है, न कि बड़ा यरूशलेम। वास्तव में जैसे कि हम संत पौलुस को कुरिंथ समुदाय को याद दिलाता पाते हैं, ईश्वर ने दुनिया में शक्तिहीनों को चुना जिससे वे शक्तिशालियों को लज्जित करें। हालांकि शास्त्री जो सही रूप में यह जानते हैं कि मसीह का जन्म कहां हुआ था, वे दूसरों को रास्ता दिखलाते हैं, लेकिन वे स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। वास्तव में ईश्वरीय मनोभावों से संयुक्त होने के लिए ग्रंथों की भविष्यवाणी को जानना ही पर्याप्त नहीं है। संत पापा ने लिखा, हमें स्वयं को उसमें उतारने की जरूरत है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम ईश्वर के वचनों को अपने में शोध की लालसा से पुनर्जीवित होने दें। हम अपने को ईश्वर से मिलन की इच्छा से प्रज्वलित होने दें। संत पापा ने लिखा कि ऐसी परिस्थिति में जैसे कि धोखेबाज और हिंसक लोग करते हैं, हेरोद गुप्त रूप में ज्योतिषियों से तारे के उदय होने का सही समय पूछता है। वह उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने और फिर वापस लौटकर उन्हें समाचार देने का आग्रह करता है, ताकि वह भी जाकर नवजात शिशु की पूजा आराधना कर सके। वे लोग सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए यीशु वह आशा नहीं है जिसे वे स्वागत करने की चाह रखते हैं, बल्कि वे अपने लिए खतरे की भांति देखते हैं। जब ज्ञानी आगे बढ़ते तो तारा पुनः प्रकट होता है और उन्हें यीशु के पास ले चलता है। यह इस बात की निशानी है, संत पापा लिखते हैं, कि सृष्टि और भविष्यवाणी उस वर्णमाला का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते और स्वयं को खोजने की अनुमति देते हैं। तारे को देखने से उन लोगों में अपार आनंद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ईमानदारी से ईश्वर की खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के हृदय को प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, वे उसे आनंद से भर देते हैं। बेतलहम के घर पहुंचने पर ज्ञानियों ने दंडवत करते हुए यीशु की पूजा आराधना की और उन्हें राजा और ईश्वर के रूप में बहुमूल्य उपहार अर्पित किए। क्यों? वे क्या देखते हैं? एक प्राचीन लेखक लिखते हैं, वे एक विनम्र छोटा बालक देखते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया है, परंतु ईश्वर की महिमा उनसे छिपी नहीं है। वे एक नवजात शिशु को देखते हैं, लेकिन वे ईश्वर की आराधना करते हैं। इस प्रकार ज्ञानी सभी गैर ख्रिस्तियों में प्रथम विश्वासी बने। कलिसिया की निशानी जो विभिन्न भाषा भाषियों के रूप में वहां एकत्रित हुई। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने लिखा, हम अपने को ज्ञानियों के स्थल में रखें, उन आशा के तीर्थ यात्रियों के शिक्षण स्थल में जिन्होंने बड़े साहस के साथ अपने कदम, अपने हृदय और अपनी संपत्ति को उनकी ओर अभिमुख किया, जो न केवल इसराइल के बल्कि सभी राष्ट्रों की आशा है। आइए हम ईश्वर की आराधना उनके छोटेपन में, उनकी राजसी गरिमा में करना सीखें, जो हमें कुचलती नहीं बल्कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है और सम्मान के साथ सेवा करने के योग्य बनाती है। आइए हम उन्हें अपना सबसे सुंदर उपहार, विश्वास और प्रेम अर्पित करें।
यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। ओ कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, ओ कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है, ओ कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, ओ कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। यहोवा की स्तुति करो, ओ वासियो, यहोवा की स्तुति करो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने एक आरामदायक रात बिताई, उठे और नाश्ता किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बुधवार सुबह पत्रकारों को एक नोट साझा किया। मंगलवार शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा कि संत पापा को डबल निमोनिया है। प्रयोगशाला परीक्षण, छाती के एक्सरे और संत पापा की नैदानिक स्थिति एक जटिल तस्वीर पेश करती है। दोपहर को संत पापा की छाती का सीटी स्कैन कराया गया, जिसे वाटिकन मेडिकल टीम और जमेली पॉलीक्लिनिक फाउंडेशन के मेडिकल स्टाफ ने निर्धारित किया था। इसमें बताया गया कि इससे द्विपक्षीय निमोनिया की शुरुआत का पता चला, जिसके लिए अतिरिक्त औषधीय उपचार की आवश्यकता थी। प्रेस कार्यालय के बयान में यह उल्लेख किया गया कि संत पापा ने पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया और पूरा दिन आराम, प्रार्थना और पढ़ते हुए बिताया। वे इस समय जो समर्थन महसूस कर रहे हैं, उसके लिए अपना आभार व्यक्त किया और प्रार्थना जारी रखने के लिए कहा। दर समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी आज 19 फरवरी से रविवार 23 फरवरी तक लेबनान में रहेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण और गहन यात्रा है, जिसमें लेबनान के कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों की सभा एवं त्रिपोली के मुफ्ती के साथ बैठकें शामिल हैं। आर्थिक संकट, लंबे राजनीतिक गतिरोध और इसराइली हमलों से त्रस्त आबादी को नजदीक से देखने का भावनात्मक प्रभाव भी होगा, जिसने देश के दक्षिणी हिस्से को तबाह करने के अलावा शरणार्थी संकट को भी और अधिक गंभीर बना दिया है। अपनी यात्रा से पहले वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए कार्डिनल माइकल चर्नी ने बताया कि वे अंतियोक के मेरोनाइट प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल बेचारा बुट्रोस राय के निमंत्रण पर ये यात्रा कर रहे हैं। यह निमंत्रण पहले नवंबर को ही मिला था, लेकिन उस समय वे नहीं जा सके और अब अंततः यात्रा करने और स्थानीय कलीसिया द्वारा किए जा रहे कार्यों का गवाह बनने के लिए खुश हैं। विशेष रूप से युद्ध के बाद, जिसने 10 लाख लोगों को 3 महीने के लिए दक्षिणी लेबनान में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया था। त्रिपोली के मुफ्ती से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं उनसे सीधे मिलने वाला पहला कार्डिनल बनूंगा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि लेबनान संवाद का देश बना हुआ है, जहां पहल जैसे कि मैं जाऊंगा मुसलमानों और कैथोलिकों को साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाती है। यह भाईचारे का एक उल्लेखनीय मिसाल है। उधर इस्लामिक समूह के मुख्य वार्ताकार ने पुष्टि की है कि समझौते के पहले चरण में पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को 6 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। आज हमास ने इस खबर की पुष्टि की कि गुरुवार को 4 शवों को सौंप दिया जाएगा, जिनमें मां शीरी के साथ छोटे एरियल और कैफिर के शव भी शामिल हैं। बिबास परिवार मां शीरी और 2 छोटे बच्चे एरियल, जो अपहरण के समय 4 वर्ष के थे, और कैफिर 9 महीने के थे, बंधकों में सबसे छोटे थे, सभी को पिछले 7 अक्टूबर को किबुच नीर ओज में उनके घर में रहते हुए पकड़ा गया था। समझौते के पहले चरण अनुसार अंतिम 6 अपहरित लोगों को शनिवार को रिहा किया जाएगा, जिनमें 10 साल से अधिक समय से पहले अपहरित 2 लोग भी शामिल हैं। शनिवार की रिहाई के बाद 59 अन्य बंधक हमास के कब्जे में रहेंगे, जिनमें से कम 28 की मौत हो चुकी है। उधर यूक्रेन में शांति पर चर्चा करने के लिए अकेले बैठक कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच नई निकटता से राष्ट्रपति जेलेंस्की खुश नहीं हैं, और उन्होंने तुर्की से, जहां वे राष्ट्रपति एर्दोगान से मिले थे, सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा, जो आज के लिए निर्धारित थी, को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। यूक्रेन के बिना, तुर्की के बिना तथा यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के बिना यूक्रेन पर कोई वार्ता नहीं हो सकती। यह कीव की स्थिति है, जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की में व्यक्त किया है। वार्ता से यूक्रेन को बाहर रखे जाने तथा सबसे बढ़कर रूस और अमेरिका के बीच हुए मेल मिलाप से, जो अब मास्को को एक मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि एक आक्रमणकारी के रूप में देखते हैं, जेलेंस्की को डर है कि उन्हें खोए हुए क्षेत्र छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें कोई सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी तथा नाटो में शामिल होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। रियाद में अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बारे में प्रेस से जानने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी दूत कीथ के लांग के समक्ष विरोध जताने के लिए कीव लौट आए हैं। जेलेंस्की के विरोध प्रदर्शन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे बहुत निराश हैं। यूक्रेन 3 साल से बातचीत की मेज पर है, कीव को युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था। हालांकि व्हाइट हाउस के नंबर 1 अधिकारी ने कहा कि वह रियाद में हुई वार्ता से संतुष्ट हैं, और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह इस महीने के अंत तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। उधर जनवरी के अंत में 200 से ज्यादा आतंकवादियों ने पश्चिमी बुर्किना फासो के 3 गांवों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें 6 क्रिश्चियन शामिल हैं। हमलावरों द्वारा घरों को आग लगा दिए जाने के कारण निवासियों को भागना पड़ा। आतंकवादी हमलों की खबर कैथोलिक सहायता संगठन एड टू द चर्च इन नीड को फादर जीन पियरे कीता ने दी, जो ACN प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, जिन्होंने हमलों में अपने पिता और कई अन्य परिवार के सदस्यों को खो दिया। हमले पश्चिमी बुर्किना फासो के बनवा प्रांत के एक क्षेत्रीय केंद्र तानसीला पल्ली में हुए। पल्ली में 37 गांव शामिल हैं, जिनकी लगभग 1/3 आबादी क्रिश्चियन है। फादर जीन पियरे ने प्रार्थना करने का आह्वान किया, कृपया हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर कोई शांति के निर्माता बन सके। उन्होंने कहा, बुर्किना फासो की सरकार रक्षा और सुरक्षा बलों और पितृभूमि की रक्षा करने वाले स्वयं सेवकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके दैनिक प्रयास शांति, सुलह और सामाजिक सामंजस्य के लिए फलदायी हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।